पृष्ठ संख्या 51। प्राचीन एवं आधुनिक जापान की एक अन्य विशेषता नौकरशाही प्रशासन थी, जिसमें राजकीय शासन के प्रभुत्व और व्यक्तिगत प्रयास एवं क्रियाशीलता की बजाय सामाजिक प्रयास और क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया जाता था। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, राष्ट्र के जीवन के सभी पक्ष शोगुन के प्रतिनिधियों के नियंत्रण व देखरेख में थे। विदेशी वाणिज्य पर सरकार का नियंत्रण था। व्यवस्था व शांति स्थापित रखने के लिए कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता था। किसी अनुचित कार्य के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व स्थिर किया जाता था। परिवार के सदस्यों के कृत्यों के लिए पूर्ण परिवार और ग्रामवासियों के कार्यों के लिए सारा गांव उत्तरदायी समझा जाता था। परिणाम स्वरूप नव जापान में सामूहिक कार्यों पर अत्यधिक जोर दिया गया। रेल व्यवस्था, तार व्यवस्था, बैंक उद्योग तथा विदेशी वाणिज्य को प्रोत्साहित करने में राज्य का सर्वाधिक योग रहा। उदाहरणार्थ, जापान के व्यापारी नौचालन के विकास में, जिसने बाद के कुछ वर्षों में आशातीत प्रगति की, सरकारी सहायता का महत्वपूर्ण हाथ रहा था। 20वीं शताब्दी में जहाँ एक ओर पश्चिमी राष्ट्र उद्योग, परिवहन तथा वाणिज्य के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को कम करने का प्रयास कर रहे थे, वहां दूसरी ओर जापान सामूहिक कार्य प्रणाली द्वारा कई लाभ प्राप्त कर चुका था। उत्तरकालीन शासन काल में नौकरशाही व्यवस्था द्वारा ही शासकीय नियंत्रण किया जाता था। यह आधुनिक जापान की शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषताओं में से है। नौकरशाही प्रशासन के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर समुराई या उसके वंशज नियुक्त किए जाते थे। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रशासन मंडल का संगठन किया गया, जो सामान्यतः सारे देश की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। या वस्तुतः यह पहले से चली आ रही तोकुगावा व्यवस्था का ही एक विस्तृत रूप था, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों पर प्रशासन का सूक्ष्म एवं संपूर्ण नियंत्रण रहता था। प्राचीन जापान की एक प्रमुख विशेषता उसकी विदेशी स्वस्थ प्राचीन जापान की एक प्रमुख विशेषता उसकी विदेशी सभ्यता को आत्मसात करने की क्षमता थी। सामंत युग से पूर्व की सभ्यता का विकास अधिकांशतः चीन के साथ संपर्क द्वारा हुआ था। यहाँ तक कि सामंत युग में भी, जिसे स्पष्टतः जापानी कहा जा सकता है, किसी किसी समय तो यहाँ के जनजीवन के कुछ पक्षों पर महाद्वीप का अत्यधिक प्रभाव लक्षित होता है। जापानियों की कार्य पद्धति मुख्यतः वहाँ के लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम होने के साथ साथ अंशतः कन्फ्यूशी और बौद्ध धर्म के आदर्शों के द्वारा भी निर्मित हुई थी। बुशिदो नीति संहिता स्पष्टतः जापानी होते हुए भी कन्फ्यूशी तथा बौद्ध आदर्शों से प्रभावित है। पारिवारिक व्यवस्था और पारस्परिक संबंधों पर भी चीन के प्रभाव की छाप दिखाई देती है। सामंतवाद का उद्भव भी अंशतः चीन की शासन प्रणाली को जापान की परिस्थितियों में ढालने के विफल प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ। चीनी लिपि को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया गया और चीनी साहित्य का अध्ययन भी चीन के समान ही उत्साहपूर्वक किया गया। बौद्ध धर्म, जिसे प्राचीन जापान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, मूलतः भारतीय होते हुए भी चीनी विशेषताओं से परिवेष्टित होकर ही वहां पहुंचा था। चीनी दर्शन ने भी जापानी विचारकों को अत्यधिक प्रभावित किया। इतना होते हुए भी जापानियों को अंधानुयायी नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि वे चीनी सभ्यता पर मुग्ध थे, परंतु वे उनके अनुकरण मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुए। बुशिदो कन्फ्यूशी और बौद्ध धर्म से नितांत भिन्न है। जापानियों ने चीनी लिपि में शब्दांश सूचक चिन्हों का आविष्कार कर उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। सही अर्थों में एक जापानी कला और साहित्य का सृजन हुआ, जो चीनी आदर्शों से उतना ही भिन्न था जितना मध्ययुगीन यूरोप की राष्ट्रीय कला या साहित्य रोम की कला या साहित्य से भिन्न थे। जापान के लोग चीन से आने वाले संस्कृति के अनवरत प्रवाह से अभिभूत नहीं हुए, अपितु इसके आधार पर उन्होंने अपने एक स्वतंत्र सभ्यता का निर्माण किया। विदेशी विचारों एवं मान्यताओं को आत्मसात करने का अभ्यस्त जापान यूरोपीय देशों के संभावित आगामी प्रभाव के लिए संदिग्ध था। शताब्दियों से जापान विदेशों से नए नए विचारों को ग्रहण करके अपने अनुरूप ढालता आ रहा था। अपने राष्ट्रीय अभिमान की रक्षा के लिए वह बाह्य देशों द्वारा अपने ऊपर असभ्य होने का आरोप सहन नहीं कर सकता था। इस राष्ट्रीय गौरव की पृष्ठभूमि के कारण वह स्वभावतः पश्चिमी देशों की संस्कृति को अस्वीकार करने के बजाय उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त हुआ। जापान ने चीनी सभ्यता को आत्मसात कर लिया था। उसकी दृष्टि में यह सर्वोच्च सभ्यता थी, परंतु जब एक बार उसे यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी सभ्यता अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है, तो वह उसे शीघ्र ही ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गया। आश्चर्य नहीं कि जापान अपने आप को एक कुशल मार्गदर्शक समझने लगा। एक बार पश्चिमी सभ्यता को भली भांति समझ लेने के पश्चात वही सुदूर पूर्व के अल्प विकसित देशों का शिक्षक बन गया। यहाँ के विद्यालयों में सुदूर पूर्व के सभी देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन जापान की संस्कृति। पृष्ठ संख्या 53। प्राचीन जापान की एक और विशेषता उसका सौंदर्य बोध है। यह कलात्मक संवेदनशीलता उसकी चित्रकला, मूर्तिकला, मृत्कला यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, वास्तुकला, भूदृश्य उद्यान कला, शिष्टाचार विधान, कुसुमोत्सव, चायपान समारोह, तलवारों का निर्माण और अलंकरण, नृत्य कला तथा अन्य विविध कलाओं में प्रकट होती है। यद्यपि स्वयं में ये विषय अत्यंत रोचक है, परंतु इस छोटे से ग्रंथ में इन विषयों पर अत्यधिक संक्षेप में ही विचार करना संभव हो सकेगा। यहाँ की कला पर भी चीनी प्रतिमानों का व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन कई सशक्त देशीय शैलियों का भी विकास हुआ तथा साथ ही विदेशी शैलियों का अनुसरण करने में भी जापानियों ने अपने मौलिकता का परिचय दिया। चीनियों के समान जापानी कलाकृतियों पर भी बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। चीनियों की तरह इनकी कलाकृतियों का उद्देश्य भी केवल प्रकृति का हूबहू चित्रमात्र प्रस्तुत कर देना नहीं था, अपितु उसमें उसकी आत्मा को उतार देना तथा पदार्थों के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों को चित्रित करना था। जापान की चित्रकला का काफी लंबा तथा उज्ज्वल इतिहास है। अमेरिका और यूरोप के संग्रह तथा पश्चिमी देशों के लोगों का इसके प्रति उत्साह इस बात का प्रमाण है कि इस कला ने जापान के बाहर भी लोगों की कलात्मक प्रवृत्ति को प्रभावित किया। जनसाधारण के मनोरंजन और शिक्षा के माध्यम के रूप में पुस्तकों में चित्र देने तथा लकड़ी पर नक्काशी के काम की शुरुआत हुई। इस समय मुख्यतः आम जनता के व्यवहार के लिए बड़े कागजों पर रंगीन छपाई तथा सचित्र पुस्तकों का प्रचलन हो गया था। यह जापान की अपनी ही योजना थी जिसकी प्रेरणा उन्होंने चीन से नहीं ली थी। इसी काल में लकड़ी पर नक्काशी का काम करने वाले तथा धातुओं से कलात्मक कृतियों का सृजन करने वाले प्रसिद्ध शिल्पी हुए। इनमें वे शिल्पी भी थे जिन्होंने बुद्ध की बड़ी बड़ी कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया था। उन्हें लाख तथा जड़ाई के काम का ज्ञान था तथा वे इस कार्य में अत्यंत दक्ष थे। जापान में चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के काफी समय पूर्व से ही इनका चीन से आयात होता था, परंतु बाद में जापान के लोगों ने अत्यधिक श्रम एवं दक्षता पूर्वक स्वयं इनका उत्पादन शुरू कर दिया। यहाँ की अतीतकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने बौद्ध मंदिरों और कुछ सामंत युग के अवशिष्ट दुर्गों के रूप में आज भी सुरक्षित है। निक्को में इएयासु की समाधि पर जो सुविख्यात चैत्य शोभा में निक्को में इएयासु की समाधि पर जो सुविख्यात चैत्य शोभायमान है, जो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और आज भी दर्शकों के मन को आह्लादित करता है। भूदृश्य उद्यान कला के कुछ भाग इतने विचित्र हैं कि ये चित्त को अधिक आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश भाग अत्यंत मनमोहक है। अन्यत्र कुछ भूदृश्य उद्यानों को लघु रूप में भी बनाया गया, जिनमें वृक्षों की वृद्धि को सीमित रखते हुए भी उनको इस सावधानी से विकसित किया गया कि वे अनुपात में सामान्य आकार के ही प्रतीत होते हैं। जब ग्लास के शगुफों की बहार आती है, तो जापान में कुसुमोत्सव की धूम होती है और इसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाता है।